دیکھیے بھائی آگے سبق شرح میں دیکھیے. قوله على تقدیر اخرى سواء كانت النسبتان ثبوتيتين او سلبيتين او مختلفتين. فقولنا كلما لم يكن زيد حيوانا لم يكن انسانا متصله موجبه فالمتصله ما حكم فيها باتصال النسبتين والسالبه ما حكم فيها بسلب اتصالهما نحو ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كانت الليل موجودة. بھئی گزشتہ سبق میں موجہات میں سے آخری موجہہ جو ہے ممکنہ خاصہ پڑا تھا ہم نے. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار ممکنہ عامہ جو ہے اس کو مقید کر دیا جاتا ہے جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کے ساتھ, جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کے ساتھ مقید کر دیا جاتا ہے اور اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی ایک ہے امکان عام ایک ہے امکان خاص. امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے معلوم ہوا اس کی جانب مخالف ضروری نہیں. اگر جانب مخالف ضروری ہوتی تو پھر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز ممکن ہے. جیسے ہر انسان کیا ہے حیوان, ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ممکن ہے انسان حیوان نہ ہو, کیونکہ انسان کا حیوان ہونا ضروری. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے انسان حیوان نہ ہو کیونکہ جانب مخالف یعنی ہونا ضروری ہے. یہ دوسری مثال دیکھ لیں بھائی, ہر انسان سے پتھر کی نفی ضروری ہے. جب پتھر کی نفی ضروری ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے انسان پتھر ہو کیونکہ جانب مخالف ضروری ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے انسان پتھر ہو, نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے, جانب مخالف ضروری ہے پتھر نہ ہونا ضروری ہے. جانب مخالف سے جب ضرورت کی نفی ہوتی ہے پھر ہی امکان پیدا ہوتا ہے. جب انسان کا پتھر نہ ہونا ضروری ہے تو پتھر ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ جو امکان عام ہوتا ہے اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے. تو اور جب جانب موافق سے بھی ضرورت کی نفی کر دی یعنی دونوں جانب سے ضرورت کی نفی کر دی تو اس کو امکان خاص کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہونا بھی ممکن ہوتا ہے اور نہ ہونا بھی ممکن ہوتا ہے, یعنی یہ دو ممکنہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے, ایک موجبہ اور ایک سالبہ. جب دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہے, ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں, معلوم ہے دونوں جانبیں ممکن بھی ہیں. جب نہ ہونا ضروری نہیں معلوم ہونا ممکن ہے, اور جب ہونا ضروری نہیں معلوم نہ ہونا بھی ممکن ہے. تو اس میں دونوں جانب کا امکان ہوتا ہے, دونوں جانب کا امکان, ایک جانب کا امکان ہوتا ہے تو جانب مخالف کی ضرورت کی نفی ہوتی ہے. جب دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہے تو دونوں جانب کا امکان بھی ہے, یعنی ہونا بھی ممکن اور نہ ہونا بھی ممکن. جب میں نے کہا زید قائم بالامکان الخاصی تو اس کا معنی یہ ہے زید قائم بالامکان العامی اور زید لیس بقائم بالامکان العامی. تو یہ ممکنہ خاصہ جو ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے تو بے شک مرکب نہیں ہے, لفظوں میں تو ایک ہی قضیہ معلوم ہوتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مرکب ہے دو ممکنہ عامہ سے, جن میں سے ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کل کے سبق میں قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ قضیہ شرطیہ جو ہے وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال یا انفصال کو بیان کیا جائے. اگر اتصال کو بیان کیا جائے تو وہ شرطیہ متصلہ ہے, اگر انفصال کو بیان کیا جائے تو وہ شرطیہ منفصلہ ہے. منفصلہ اور شرطیہ منفصلہ میں اما یا او وغیرہ آئیں گے, جو انفصال کے لیے لفظ آتے ہیں وہ اس میں آئیں گے, جبکہ شرطیہ متصلہ میں یہ اداتے شرط آئیں گے جیسے ان ہے کلما ہے ایزا ہے, جو جو شرط کے لیے لفظ آتے ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے. تو شرطیہ متصلہ میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کو ذکر کیا جاتا ہے. फिर इत्तेसाल का ईजाब भी हो सकता है और इत्तेसाल की नफी भी हो सकती है। अगर मुत्तसिला में इत्तेसाल का ईजाब हो तो वो मुजीबा, और अगर उसमें इत्तेसाल की नफी हो तो वो सालिबा है। इसी तरह मुनफसिला में अगर इन्फिसाल का सबूत हो तो वो मुजीबा, और अगर इन्फिसाल की नफी हो तो वो सालिबा है। तो शर्तिया मुत्तसिला के बारे में कल हमने तफसील पढ़ी थी कि मुत्तसिला में क्या बयान होता है, दो निस्बतों में इत्तेसाल, दो निस्बतें हैं मालूम, एक निस्बत मुकद्दम में है, एक निस्बत किस में है, ताली। इन दो निस्बतों में या इत्तेसाल का सबूत होगा या इत्तेसाल की नफी होगी, नफी होगी। तो ये जो दो निस्बतें हैं, एक मुकद्दम में और एक ताली में, ये दोनों निस्बतें खुद भी मुजीबा भी हो सकती हैं, दोनों सालिबा भी हो सकती हैं। मुकद्दम मुजीबा हो और सानी सालिबा हो, या अव्वल सालिबा हो और सानी मुजीबा हो, तो चार एहतमाल बनते हैं। ईजाब में भी चार सूरतें और सल्ब में भी चार सूरतें, और उन चारों की मिसालें मैंने आपको लिखवा दी थी। मुजीबा की भी चारों मिसालें और सालिबा की भी चारों मिसालें लिखवा दी थी भाई। और उसके बाद फिर इन्होंने यह भी बताया था कि जो मुत्तसिला है फिर यह दो किस्म पर है, या यह लुजूमिया होगा या इत्तेफाकिया होगा। लुजूमिया वो है कि जिनमें यह बयान किया जाए कि यह इन दो निस्बतों में इत्तेसाल लाजमी है, जरूरी है। तो मुत्तसिला में क्या बयान होता है, दो निस्बतों में इत्तेसाल, यह इत्तेसाल अगर लाजमी हो, जरूरी हो, तो फिर इसको मुत्तसिला लुजूमिया कहते हैं। और अगर यह इत्तेसाल लुजूम का न हो, यानी लाजमी न हो, जरूरी न हो, तो फिर इसको इत्तेफाकिया कहते हैं, मुत्तसिला इत्तेफाकिया। और इत्तेसाल जरूरी तब होगा, लाजमी तब होगा, जब वहां लुजूम का अलाका हो। एक निस्बत है मुकद्दम में, एक निस्बत है ताली में, इन दो निस्बतों में अगर लुजूम का इलाका होगा तो फिर यह लुजूमिया कहलाएगा, और लुजूम का इलाका नहीं होगा तो यह इत्तेफाकिया कहलाएगा। और लुजूम के इलाके चार हैं भाई, इलाके तो वैसे और भी हैं, इलाके का माना रबत, ताल्लुक भाई, रबत और ताल्लुक और भी किस्म के हो सकते हैं, लेकिन जिनमें लुजूम वाला रबत और ताल्लुक है वो चार इलाके हैं। एक तो इल्लियत वाला, इल्लत होने का, कि मुकद्दम इल्लत हो किसके लिए, ताली के लिए, या ताली इल्लत हो किसके लिए, मुकद्दम के लिए। दो ये सूरतें हो गई, एक में मुकद्दम इल्लत है ताली के लिए, दूसरे में ताली इल्लत है मुकद्दम के लिए, दो ये सूरतें। तीसरी सूरत के दोनों मालूल हो एक ही इल्लत के, दोनों मालूल हो। मैंने आपको बताया था कि इल्लत वो चीज है कि जिस पर किसी चीज का वजूद मौकूफ हो, इल्लत है तो वो चीज है और इल्लत नहीं तो वो चीज भी नहीं। जैसे सूरज का निकलना इल्लत है दिन के होने की, सूरज निकलेगा तो दिन होगा, तो सूरज का निकलना है इल्लत और दिन का होना है मालूल भाई। जब भी इल्लत पाई जाए मालूल का पाया जाना जरूरी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता इल्लत तो पाई जाए और मालूल ना पाया जाए भाई। अगर मालूल पाया जा रहा है और इल्लत नहीं है तो इसका मतलब है आपसे गलती हुई है, आपने एक चीज को इल्लत समझ लिया था, वो तो इल्लत है ही नहीं। इल्लत जब भी हो मालूल का पाया जाना जरूरी है। और एक है सबब और एक है मुसबब। सबब भी एक चीज तक पहुंचाता है, सबब की वजह से भी एक चीज का वजूद होता है, लेकिन सबब बराहे रास्त उसमें मुअस्सिर नहीं होता। इल्लत बराहे रास्त मुअस्सिर होती है, उसका असर होता है उसमें। जैसे सूरज के निकलने के साथ दिन का होना लाजिम है, सूरज का निकलने का असर है क्या, दिन का होना। तो सूरज का निकलना हुआ इल्लत और दिन का होना है मालूल। जबकि सबब वो बराहे रास्त मुअस्सिर नहीं होता, वो एक चीज का बाइस तो बनता है, उस चीज तक पहुंचाता तो है, लेकिन उसके वजूद में वो बराहे रास्त मुअस्सिर नहीं। लिहाजा सबब हो तो मुसबब का होना जरूरी नहीं। तो इल्लत भी, उस पर भी एक चीज का वजूद मौकूफ होता है, सबब पर भी एक चीज का वजूद मौकूफ होता है, लेकिन फर्क यह है कि इल्लत के पाए जाते हुए मालूल का होना जरूरी, लेकिन सबब के होते हुए मुसबब का होना जरूरी नहीं है। फर्क समझ में आया? तो मसलन एक चीज को आप इल्लत समझ रहे थे, लेकिन आपने देखा इल्लत पाई जा रही है और मालूल नहीं पाया जा रहा, मालूम हुआ आपसे गलती हो गई। यह इल्लत नहीं है बल्कि यह सबब है। क्या है? सबब हो तो मुसबब ना हो, ऐसा हो सकता है। सबब तो हो और मुसबब ना हो, लेकिन इल्लत हो और मालूल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज जब भी निकलेगा दिन जरूर होगा। तो देखो कभी तो मुकद्दम इल्लत होगा ताली के लिए, जैसे इनकानति शम्सु तालियातन फन्नहारो मौजूदुन, सूरज निकलेगा तो दिन होगा। और कभी ताली जो है वो इल्लत होगा किसके लिए? मुकद्दम के लिए, जैसे इनकान नहारु मौजूदन फशम्सु तालियातुन, अगर दिन मौजूद है तो सूरज निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि ताली जो सूरज का निकलना वो इल्लत है मुकद्दम यानी दिन के होने के लिए। कभी मुकद्दम और ताली में यह अलाका होता है कि वो दोनों एक ही इल्लत के मालूल होते हैं, और जब इल्लत पाई जा रही है तो दोनों ही पाए जाएंगे। इल्लत ना हुई तो दोनों की नफी होगी, और इल्लत हुई तो दोनों का वजूद होगा। जैसे इन कानन नहारु मौजूदन फल अर्ज मुजी अतुन, मुजी अजवाद के साथ है, अगर दिन मौजूद है तो जमीन रोशन है। देखो दिन का होना इसके इल्लत सूरज का निकलना, और जमीन का रोशन होना इसके इल्लत भी क्या है? सूरज का तुलू होना। तो सूरज का तुलू होना इल्लत है दोनों के लिए, दिन होने के लिए भी और जमीन के रोशन होने के लिए भी। तो जब सूरज निकला होगा तो दोनों पाए जाएंगे, और सूरज नहीं है तो दोनों नहीं होंगे। तो जब ये दोनों मालूल हैं एक ही इल्लत के, तो ये इनमें लुजूम का इलाका है। एक होगा तो दूसरा भी जरूर होगा, क्योंकि दोनों की इल्लत एक है भाई। और कभी जो अलाका होता है वो तजायुफ का होता है। तजायुफ मुतजायफेन उन दो चीजों को कहते हैं कि जिनमें से एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ होता है। जैसे खावंद किसे कहते हैं? जिसकी कोई बीवी हो। और बीवी किसे कहते हैं? जिसका कोई खावंद हो। बाप किसे कहते हैं? जिसका कोई बेटा या बेटी हो। और बेटा या बेटी किसे कहते हैं? जिनका कोई बाप हो। तो लिहाजा मसलन मैं कहता हूं इन कान जैदुन अबा अमरिन, अगर जैद अमर का बाप है फअमरुन इब्नुहू, तो अमर उसका बेटा है। देखा, क्योंकि इन दोनों निस्बतों में तजायुफ की निस्बत है। जैद का बाप होना किसके लिए? अमर के लिए। यह तभी होगा जब अमर क्या हो? उसका बेटा हो। तो दोनों निस्बतों में तजायुफ है। जब एक होगी तो दूसरी जरूर होगी। तो अलाके लुजूम के अलाके जो हैं चार हैं। नंबर एक कि मुकद्दम इल्लत हो ताली के लिए। नंबर दो ताली इल्लत हो मुकद्दम के लिए। नंबर तीन कि दोनों मुकद्दम और ताली दोनों मालूल हो एक ही इल्लत के। और नंबर चार कि दोनों मुतजायफेन हो। तो इनमें लुजूम का अलाका होगा, एक पाया जाएगा तो दूसरा जरूर पाया जाएगा। और इसके अलावा अगर हो तो उसको इत्तेफाकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्तेफाकिया कहते हैं। मसलन जैद जो है वो शायर है और अमर जो है वो कातिब है, तो मैं कहता हूं इन कान जैदुन शायरन फअमरुन कातिबुन, जैद शायर है तो अमर कातिब है। अब देखो क्या जैद के शायर होने के साथ अमर का कातिब होना लाजिम है? नहीं, ये इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि जैद शायर है तो अमर कातिब है। बात समझ में आ गई? तो ये मुजिबा की मिसाल, और सालिबा की भी यही मिसाल। लैसत अलबत्ता, ऐसा कतई तौर पर नहीं है इन कान जैदुन शायरन फअमरुन फअमरुन कातिबुन। तवज्जो है? लेकिन ईजाब के अंदर दोनों को वजूदी मान लो, दोनों निस्बतों को। जैद शायर है और अमर कातिब है, इजाब में मुजिबा में इन काना जैदुन शायरन फअमरुन कातिबुन, दोनों हैं, दोनों निस्बतें। सालिबा के अंदर एक को मानो, फर्ज करो जैद तो शायर है लेकिन अमर कातिब नहीं, या अमर कातिब तो है लेकिन जैद शायर नहीं। अब इस सूरत में आप यूं कहेंगे, जब दोनों में से एक है दूसरी नहीं है, तो आप कहेंगे लैस अलबत्ता इन काना जैदुन शायरन फअमरुन कातिबुन। ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि जैद शायर हो तो अमर कातिब हो, यानी ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में से वाकई एक है दूसरा नहीं है। अगर जैद शायर है तो अमर कातिब नहीं, और अगर अमर कातिब है तो जैद शायर नहीं। ये वो सूरत जब दोनों में से एक चीज है दूसरी नहीं है। तो अब देखिए भाई, यही तकरीर करेंगे आगे भाई। आगे आज का सबक देखिए भाई, कौलुहु अला तकदीर उखरा। मैंने क्या बताया कि कजिया मुत्तसिला में दो नस्बतों में इत्तेसाल बयान होता है या इन्फिसाल, और वो दोनों नस्बतें सुबूती भी हो सकती हैं या सलबी भी हो सकती हैं। पहली सुबूती हो दूसरी सलबी हो, या पहली सलबी हो और दूसरी सुबूती हो, ये भी हो सकता है। चार सूरतें बनती हैं। देखो सारी यही बातें अब ये बयान करेंगे। कहते हैं सवा उनकानतिन निस्बतानी सुबूती यतैनी औ सलबी यतैनी औ मुख्तलिफतैनी, बराबर हैं कि ये दोनों निस्बतें, कौन सी दो निस्बतें जिनमें इत्तेसाल बयान किया जा रहा है, एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत का सबूत है या उसकी नफी है, ये दोनों निस्बतें सवा उनकानतिन निस्बतानी सुबूती यतैनी, बराबर है कि ये दोनों निस्बतें सुबूती हों औ सलबी यतैनी, या दोनों क्या हों सलबी हों, औ मुख्तलिफतैनी, या दोनों क्या हों मुख्तलिफ, यानी पहली सुबूती और दूसरी सलबी, या पहली सलबी और दूसरी सुबूती। तो ये चारों सूरतें इसमें आ गई। मुख्तलिफतैन में दो सूरतें आ गई भाई, एक क्या पहली सुबूती तो दूसरी सलबी, या पहली सलबी तो दूसरी सुबूती। तो ये चारों सूरतें। फ़क़ौलुना, पस हमारा ये कौल, कुल्लमा लम यकुन ज़ैदुन हयवानन लम यकुन इंसानन मुत्तसिलतुन मुजिबतुन, ये मुत्तसिला मुजिबा है। कौन सा? कुल्लमा लम यकुन ज़ैदुन हयवानन लम यकुन इंसानन, ज़ैद जब हैवान नहीं तो इंसान नहीं। यानी एक निस्बत को फर्ज करोगे तो दूसरी को भी मानना पड़ेगा। जैद को अगर हैवान नहीं मानोगे तो उसको इंसान भी नहीं मानना पड़ेगा। वो इंसान इसीलिए है क्योंकि वो हैवान है भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये मुत्तसिला मुजिबा है। देखो पहली निस्बत भी सलबी, दूसरी निस्बत भी सलबी, लेकिन दोनों में इत्तेसाल बयान किया गया कि पहली मानोगे तो दूसरी को भी मानना पड़ेगा। पहली मानोगे, पहली सलबी मानोगे तो दूसरी सलबी को भी मानना पड़ेगा। अगर जैद को हैवान नहीं मानोगे तो उसको इंसान भी नहीं मानना पड़ेगा। तो कहते हैं ये मुत्तसिलतुन मुजिबतुन, ये मुत्तसिला मुजिबा है। फल मुत्तसिलतु मा हुकिम फीहा बित्तिसालिन निस्बतैनी, बस मुत्तसिला वो है जिसमें हुक्म हो दो निस्बतों के दरमियान इत्तिसाल का। देखा दोनों निस्बतों में क्या बयान हुआ ऊपर, इत्तेसाल। निस्बतें बेशक सलबी हैं लेकिन एक सलबी मानोगे तो दूसरी सलबी निस्बत भी मानना पड़ेगी। तो उसमें दो निस्बतों में इत्तेसाल होता है। वसालिबतु मा हुकिमा फीहा बिसलबी इत्तेसालिहिमा, और सालिबा जो है वो है जिसमें हुक्म हो दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल के सलब का, इत्तेसाल की नफी का। इधर देखिए कजिया मुत्तसिला में क्या बयान होगा, शर्तिया मुत्तसिला में दो निस्बतों के दरमियान इत्तेसाल, अगर इत्तेसाल होना जिक्र किया जाए तो मुजिबा है, और अगर इत्तेसाल की नफी की जाए तो वो सालिबा है, सालिबा है, ये माना है। तो कहते हैं वह सालिबतु मा हुकिमा फीहा बिसलबी इत्तेसालिहिमा, और सालिबा वो है जिसमें हुक्म किया जाए दोनों निस्बतों के इत्तेसाल की नफी का। नहु लैसा अलबत्ता कुल्लमा कानति शम्सु तालियातन कानति लैलु मौजूदतन, आपकी किताबों में कानति लैलु मौजूदतन है, हां ये कानल लैलु मौजूदन होना चाहिए भाई, कानल लैलु मौजूदन, क्योंकि लैल मुजक्कर है तो कानत नहीं बल्कि काना होना चाहिए, और मौजूदतन नहीं बल्कि मौजूदन। तो कहते हैं लैसा अलबत्ता, ऐसा कतई तौर पर नहीं है कि कुल्लमा कानति शम्सु तालियातन, सूरज जब भी तुलू हो तो कान अल्लैलु मौजूदन, तो रात मौजूद हो, ऐसा कतई तौर पर नहीं है भाई। देखो दो निस्बतें बयान हुई, कौन सी दो, कुल्लमा कानति शम्सु तालियातन सूरज का तुलू होना, और कान अल्लैलु मौजूदन, और दूसरा क्या है रात का होना। सूरज का तुलू होना होगा तो रात भी मौजूद हो, लैसा अलबत्ता ऐसा नहीं है। देखा इत्तेसाल की नफी कर दी, तवज्जो है, इत्तेसाल की नफी कर दी कि सूरज के तुलू होने पर रात का वजूद हो ऐसा कतई तौर पर नहीं है। इन दोनों में इत्तेसाल नहीं है, सूरज हो तो रात नहीं होती, इन दोनों में इतिसाल, तो ये इतिसाल की नफी कर दी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें इतिसाल की नफी की, जब इतिसाल की नफी की तो इनफिसाल का सबूत आ गया। क्या आ गया? तो ये मुत्तसिला सालिबा जिमनन मुनफसिला मुजिबा है, लेकिन इसको कहेंगे सालिबा मुत्तसिला ही, क्योंकि ये कजिया मुत्तसिला है और नीज लैसा अलबत्ता हुरूफ सलब आ रहे हैं, तो उसके एतबार से नाम रखना पड़ेगा। तो सलब इतिसाल दरअसल क्या होता है? सुबूत इन्फिसाल, लेकिन नाम वही सलब का रखेंगे, सालिबा है, और सालिबा नाम रखना है तो फिर तो मुत्तसिला कहना पड़ेगा कि सालिबा मुत्तसिला है, सालिबा मुनफसिला तो नहीं है ये। वकदालिका लुजूमियतु, अब लुजूमिया का बयान करने लगे हैं, कहते हैं वकदालिका लुजूमियतुल मूजिबतु मा हुकिमा फीहा बिल इत्तिसाल बिअलाकतिन, और इसी तरह लुजूमिया मूजिबा जो है मा वो मुत्तसिला है, हुकिमा फीहा बिल इत्तिसाल बिअलाकतिन, जिसमें हुक्म लगाया जाए इत्तिसाल बिअलाका का, इलाके की वजह से, यानी लुजूम के इलाके की वजह से इत्तिसाल है। मुत्तसिला लुजूमिया किसे कहते हैं? भाई देखो है तो मुत्तसिला, दो निस्बतों में क्या बयान हो रहा है? इत्तिसाल, इत्तिसाल बयान तो हो रहा है, लेकिन इत्तिसाल में इलाका कौन सा है? लुजूम वाला। तो मुत्तसिला लुजूमिया वो है जिसमें दो निस्बतों में इत्तिसाल इलाका लुजूम की वजह से बयान किया जाता है, जिनमें इत्तिसाल बयान होता है लेकिन किस इलाके की वजह से? लुजूम। इन दो निस्बतों में इत्तिसाल है इलाका लुजूम की वजह से, तवज्जो है, उसमें क्या बयान होता है कि इन दो निस्बतों में इत्तिसाल है इलाका लुजूम की वजह से। बात समझ में आ गई, यह माना है वकजालिकल लुजूमियतुल मूजिबतु मा हुकिम फीहा बिल इत्तिसाल बिअलाकतिन, और इसी तरह लुजूमिया मूजिबा वो है जिसमें हुक्म लगाया जाए इलाके की वजह से इत्तिसाल का, इलाके की वजह से यानी इलाके लुजूम की वजह से इत्तिसाल का हुक्म लगाया जाए। वसालिबतु मा हुकिम फीहा बि अन्नहु लैसा हुनाका इत्तिसालुन बिअलाकतिन, और लुजूमिया सालिबा वो है जिसमें यह हुक्म लगाया जाए कि बी अन्नहू लैसा हुनाका इत्तिसाल बिअलाकतिन, कि वहां पर यानी इन दो निस्बतों में इत्तिसाल बिअलाका नहीं है, इनमें इत्तिसाल बिअलाका यानी लुजूम के इलाके की वजह से यहां पर इत्तिसाल नहीं है। तो कहते हैं सवा उन लम यकुन हुना का इत्तिसाल उन अवकान लाकिन ला बि अलाकतिन। भाई इधर देखिए इस बात को समझ लें, लुजूमिया में क्या बयान होता है? लुजूमिया मुजिबा भी हो सकता है और सालिबा भी। मुजिबा में क्या बयान होगा कि जो दो निस्बतों में इत्तिसाल बयान किया जा रहा है, यह कौन सा इत्तिसाल है? इत्तिसाल बि अलाका है। क्या है? या यूं का इत्तिसाल बिल लुजूम है, इलाका कौन सा मुराद है? लुजूम। तो इसमें इत्तिसाल बिल लुजूम है, और सालिबा में क्या बयान होगा कि यहां इत्तिसाल बेइलाका नहीं है, या यूं को यहां इत्तिसाल बिल लुजूम नहीं है, लुजूम की वजह से इत्तिसाल नहीं है। तवज्जो है, यह माना है वसालिबतु मा हुकिमा फीहा बिअन्नहु लैसा हुनाका इत्तिसाल बिअलाकतिन, और सालिबा वो है जिसके अंदर यह हुक्म लगाया जाए कि वहां पर इत्तिसाल बिअलाका यानी इत्तिसाल बिल लुजूम नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। मुजिबा में क्या हुक्म होगा? कि इत्तिसाल बिल लुजूम है, और सालिबा में क्या हुक्म होगा? इत्तिसाल बिल लुजूम नहीं है। आगे देखिए सवा उन लम यकुन होना का इत्तिसाल उन, बराबर है कि वहां सिरे से इत्तिसाल हो ही ना, औ काना या इत्तिसाल तो हो लेकिन लब अलाकतिन, लेकिन किसी इलाके यानी लुजूम की वजह से ना हो। मुजिबा में क्या होगा कि इत्तिसाल कौन सा है? लुजूम की वजह से। और सालिबा में क्या होगा कि यहां इत्तिसाल बिल लुजूम नहीं है। तवज्जो है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, मुश्किल जगह तवज्जो से समझ लो। मुजिबा लुजूमिया में क्या बयान होगा कि इन दो निस्बतों में इत्तिसाल बिअलाका है, यानी को इत्तिसाल बिल लुजूम है, इन दोनों में इत्तिसाल बिल लुजूम है। और सालिबा में क्या बयान होगा कि इनमें इत्तिसाल बिल लुजूम नहीं है, उसमें दोनों सूरतें आ गई, सिरे से इत्तिसाल ही ना हो या इत्तेसाल तो हो लेकिन इत्तेसाल बिल लुजूम ना हो, इत्तेसाल बिल भाई याद रखो एक है कैद एक है मुकैद, एक है कैद एक है मुकैद। मसलन एक है रजुल और एक है रजुल शुजा बहादुर आदमी। रजुल एक लफ्ज है, मैं इसकी एक सिफत ले आता हूं शुजाउन, तो अब ये मुकैद हो गया रजुल शुजा। पहले रजुल था, ये हर आदमी पर बोला जा सकता था चाहे बहादुर हो या बहादुर ना हो, लेकिन जब मैंने कैद लगा दी रजुलन शुजाउन, अब ये सिर्फ किस पर बोला जाएगा बहादुर आदमी पर, जो बहादुर नहीं होगा उस पर ये नहीं बोला जा सकता, उस पर ये सादिक नहीं आएगा। तवज्जो है, तो रजुल हुआ मुकैद और शुजा जो सिफत है उसके लिए क्या बन गई कैद। तो एक होता है मुकैद एक होती है उसकी कैद। तवज्जो है, रजुल शुजा रजुल क्या मुकैद और शुजा उसकी सिफत क्या है कैद है। तो देखो मुकैद की नफी के की दो सूरतें हैं, एक सूरत यह कि आप मुकैद ही की नफी कर दें, एक सूरत यह कि आप सिर्फ कैद की नफी कर दें तो भी मुकैद की नफी हो जाएगी। कैसे? देखो मसलन मैं आपसे कहता हूं कि इस घर में बहादुर आदमी नहीं है, एक खास घर की तरफ मैं इशारा करके क्या कहता हूं, इस घर में बहादुर आदमी नहीं है, तो इस बहादुर आदमी इस घर में न हो उसमें दो सूरतें आ गई। एक सूरत सिरे से कोई आदमी नहीं है इस घर में, इस घर में जब एक भी आदमी नहीं है तो मैं कह सकता हूं इस घर में बहादुर आदमी नहीं है। बहादुर आदमी देखो इस घर में आदमी ही सिरे से कोई नहीं तो मैं कह सकता हूं या नहीं कि इस घर में बहादुर आदमी नहीं है। मैं कह सकता हूं इस घर में बहादुर आदमी नहीं, या एक आदमी इस घर में हो लेकिन वो बहादुर नहीं है, आदमी तो है लेकिन बहादुर नहीं है, तो भी मैं कह सकता हूं इस घर में बहादुर आदमी नहीं है। मैं नफी किसकी करना चाहता हूं, बहादुर आदमी यानी मुकैद की। तो उस मुकैद की नफी के दो सूरतें हैं, एक सूरत यह कि मुकैद खुद ही ना हो, जब मुकैद नहीं है तो साथ कैद भी, और एक सूरत यह है कि सिर्फ कैद ना हो, आदमी तो है लेकिन शुजा नहीं है। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है। तो मुकैद की नफी के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या कि मुकैद को कैद समेत दोनों ही चीजें ना हो, आदमी ही सिरे से नहीं है, जब आदमी नहीं है तो बहादुर आदमी कहां से है, तो बहादुर आदमी उस घर में कहां से जब आदमी ही नहीं है कोई, तो जब आदमी की नफी करेंगे तो फिर भी बहादुर आदमी की नफी हो जाएगी, और सिर्फ कैद की नफी यानी बहादुर की नफी कर दें तो भी मुकैद की नफी हो जाएगी। तवज्जो है, तो यहां पर भी इन्होंने क्या कहा, लुजूमिया मुजीबा कौन सा कजिया है जिसमें इत्तेसाल बिल लुजूम का हुक्म हो, मुत्तसिला लुजूमिया कौन सा कजिया है जिसमें यूं कहें लुजूमिया मुजीबा वो है जिसमें क्या हुक्म हो इत्तेसाल बिल लुजूम का, कि ये जो दो निस्बतों में इत्तेसाल है ये कौन सा इत्तेसाल है, इत्तेसाल बिल लुजूम है, और सालिबा में क्या होगा कि जो दो निस्बतें हैं इनमें इत्तेसाल बिल लुजूम नहीं है। तवज्जो है, इत्तेसाल बिल लुजूम नहीं है, तो उसमें दो सूरतें आ गई, सिरे से इत्तेसाल ही ना हो, जब इत्तेसाल ही नहीं है तो फिर इत्तेसाल भी लुजूम भी नहीं है, या इत्तेसाल तो है लेकिन लुजूम वाला नहीं है, यह भी सूरत इसमें आ गई। जब मैं कहूं इन दो निस्बतों में इत्तेसाल बिल लुजूम नहीं है तो दो सूरतें आ गई, एक सूरत क्या सिरे से इत्तेसाल ही ना हो, जब इत्तेसाल नहीं है तो इत्तेसाल बिल लुजूम कहां से आ सकता है, और दूसरी सूरत यह है कि इत्तेसाल तो है लेकिन सिर्फ कैद यानी लुजूम की नफी कर दूं, कि इत्तेसाल तो है लेकिन इत्तेसाल बिल लुजूम नहीं है। बात समझ में आ गई, तो मुकैद की नफी दो तरह से हो सकती है, कि एक तो यह कि मुकैद और कैद दोनों की नफी कर दो, सिरे से इत्तेसाल ही नहीं है, जब इत्तेसाल नहीं तो इत्तेसाल बिल लुजूम बतरीके औला नहीं है, और दूसरी सूरत यह कि सिर्फ कैद की नफी करो, इत्तेसाल तो है लेकिन उसकी वो कैद नहीं, तो इत्तेसाल तो है लेकिन इत्तेसाल बिल लुजूम नहीं है। जैसे देखो इसकी मिसाल इन्होंने हाशिए में दी है, लैस अलबत्ता कुल्लमा कानति शम्सु तालियातन फल्लैलु मौजूदुन। तवज्जो है, मिसाल मिल गई, لَيْسَ أَلْبَتَّتَا كُلَّمَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُودٌ, ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کیا کہ جب بھی سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو, سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو, ایسا نہیں ہے. اب مجھے بتائیے سورج کے طلوع ہونے میں اور رات کے موجود ہونے میں اتصال ہے؟ نہیں, ان میں اتصال ہی نہیں. جب اتصال نہیں ہے تو اتصال باللزوم بطریق اولا نہیں ہے, تو یہ بھی لزومیہ سالبہ کی مثال بن گئی. اس لزومیہ, کیونکہ اس لزومیہ سالبہ میں کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ اتصال باللزوم کی نفی ہوتی ہے. جب اس میں سرے سے اتصال ہی نہیں ہے تو اتصال باللزوم بھی نہیں ہے, لہذا یہ اس کی مثال ہے. اور دوسری مثال دیکھیں, لیس البتہ کلما کان الانسان ناطقا کان الحمار ناہقا, ایسا نہیں ہے کہ انسان جب بھی ناطق ہو تو گدا ناہق ہو, گدا ناہق ہو. تو یہاں پر انسان کے ناطق ہونا یہ بھی ہے اور گدے کا ناہق ہونا یہ بھی ہے. کیا ہے؟ ایک نسبت ہے تو دوسری بھی ہے یا نہیں؟ تو دونوں میں اتصال تو ہے, لیکن کیا یہ اتصال باللزوم ہے؟ انسان جب بھی ناطق ہوگا تو کیا گدا ناہق ہونا ضروری ہے؟ نہیں. تو اتصال تو دونوں میں ہے, انسان اگر ناطق ہے تو گدا کیا ہے؟ یہ دونوں موجود ہیں یعنی نسبتیں دونوں ہیں, تو دونوں میں اتصال تو ہے لیکن یہ اتصال باللزوم نہیں. اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے, انسان ناطق ہے تو گدا کیا ہے؟ ناہق ہے. تو اتصال تو ہے لیکن اتصال کون سا ہے؟ لزوم والا نہیں ہے. بات یہ چل رہی تھی نا کہ لزومیہ سالبہ میں نفی ہوتی ہے کس کی؟ اتصال باللزوم کی. اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو سرے سے اتصال ہی نہ ہو جیسے پہلی مثال میں تھا, سرے سے اتصال ہی نہیں ہے, سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ رات ہو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, تو اتصال ہی سرے سے نہیں ہے. اور دوسرے میں اتصال تو ہے, انسان ناطق ہے تو گدا کیا ہے؟ ناہق ہے. لیکن یہ اتصال کس قسم کا ہے؟ یہ اتفاقی ہے, تو اس کی نفی کر دی. کیا کر دی؟ لیس البتہ, تھا ایسا نہیں ہے کہ انسان ناطق ہو تو گدا ناہق ہو. تو یہ دونوں سالبہ لزومیہ کی مثالیں ہیں, اور سالبہ لزومیہ میں کیا بیان ہوتا ہے؟ کہ اس میں اتصال باللزوم نہیں ہے, تو پہلے میں سرے سے اتصال ہی نہیں ہے تو اتصال باللزوم بھی نہیں ہے, اور دوسرے میں اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں ہے, اس کی نفی کر دی. پہلے میں بھی کہہ دیا اتصال باللزوم نہیں, دوسرے میں بھی کہہ دیا اتصال باللزوم نہیں, لیکن فرق کیا؟ پہلے میں سرے سے اتصال ہی نہیں, جب اتصال ہی نہیں تو اتصال باللزوم نہیں ہے, یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اور دوسرے میں اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں, تو وہاں بھی کہہ سکتے ہیں ان میں اتصال باللزوم نہیں ہے. تو دونوں میں اتصال باللزوم نہیں ہے, لیکن ایک میں سرے سے اتصال ہی نہیں اور ایک میں اتصال تو ہے لیکن اتصال باللزوم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وَالسَّالِبَةُ مَا حُكِمَ فِيهَا بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اتِّصَالٌ بِعَلَاقَةٍ, اور سالبہ لزومیہ وہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ وہاں پر کوئی اتصال بعلاقہ نہیں ہے, سواءٌ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّصَالٌ, برابر ہے کہ وہاں اتصال ہی نہ ہو, او کانا, یا اتصال تو ہو لیکن لا بعلاقتن, لیکن وہ علاقہ لزوم کی وجہ سے نہ ہو. وَأَمَّا الْاتِّفَاقِيَّةُ, اور متصلہ اتفاقیہ جو ہے, فَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِمُجَرَّدِ الْاتِّصَالِ اَوْ نَفْيِهِ, جس میں مجرد اتصال اور نفی کا حکم ہو, یعنی صرف اتصال یا نفی اتصال کا حکم ہو, من غیر ان یکون ذلک مستندا الى العلاقه, بغیر اس کے کہ اس کی نسبت ہو کسی علاقہ کی طرف. اس میں دو چیزوں کے درمیان اتصال تو ہوتا ہے, ان کان زید شاعرا فعمر کاتب, دیکھا دونوں میں اتصال تو بیان ہوا لیکن کیا کوئی علاقہ ہے؟ نہیں, تو علاقے کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْاتِّفَاقِيَّةُ, تو متصلہ اتفاقیہ وہ ہے جس میں صرف اتصال یا نفی اتصال کا حکم ہو, من غیر ان یکون ذلک مستندا الى العلاقه, بغیر اس کے کہ اس کی نسبت ہو کسی علاقہ کی طرف. نحو کلما کان الانسان ناطقا فالحمار ناحق, جب بھی انسان ناطق ہوگا تو گدا ناحق ہوگا. और वाकई इंसान नातिक है तो गधा क्या है? नाहिक। लेकिन क्या इंसान के नातिक होने के साथ गधे का नाहिक होना जरूरी है? नहीं। तो यहां अलाका लुजूम नहीं है, अलबत्ता इत्तेफाकन दोनों निस्बतें पाई गई हैं। वलैसा कुल्लमा कानल इंसान नातिकन कानल फरस नाहिकन, और ऐसा नहीं है कि जब भी इंसान नातिक हो तो घोड़ा नाहिक हो। ऐसा नहीं है जब भी इंसान नातिक हो तो घोड़ा नाहिक हो। क्या हो भाई? घोड़ा नाहिक होता है या साहिल होता है? साहिल होता है। लेकिन यहां तो नफी की जा रही है, इंसान नातिक हो तो घोड़े का नाहिक होना जरूरी नहीं, घोड़े से नाहिक होने की नफी की जा रही, इस बात तो नहीं किया जा रहा। तो एक निस्बत की तकदीर पर दूसरी निस्बत की नफी की जा, इंसान नातिक हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि घोड़ा नाहिक हो। हम घोड़े से नाहिक होने की नफी कर रहे हैं, कोई इस बात नहीं कर रहे कि आप कहें कि घोड़ा तो साहिल होता है। हमने कब कहा घोड़ा नाहिक है? हमने कहा इंसान नातिक हो तो घोड़े से नाहिक होने की नफी आपको मानना पड़ेगी, और नफी कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो लैसा कुल्लमा कानल इंसान नातिकन कानल फरस नाहिकन, ऐसा नहीं है कि इंसान जब भी नातिक हो तो घोड़ा नाहिक हो। फतदब्बर, बस आप इसमें गौर कर लीजिए। फतदब्बर दर असल इशारा है एतराज की तरफ। एतराज ये करना चाहते हैं शारह कि इन्होंने मुत्तसिला की दो किस्में बनाई, लुजूमिया और इत्तेफाकिया। हालांकि इसकी तो तीन किस्में हैं, लुजूमिया, इत्तेफाकिया और मुतलका। तवज्जो है? इन्होंने मातिन ने कितनी किस्में बनाई? दो किस्में। मुत्तसिला दो किस्म पर है, या अलाका लुजूम होगा या अलाका लुजूम नहीं होगा। तो दो किस्में हैं, लुजूमिया और इत्तेफाकिया। हालांकि उलमा ने जिक्र किया है कि इसकी तीन किस्में हैं, लुजूमिया, इत्तेफाकिया और मुतलका। किस तरह तकसीम करते हैं? वो फरमाते हैं कि कजिया मुत्तसिला में इत्तेसाल बयान होता है। अगर इसमें यह हुक्म हो कि यह इत्तेसाल मुकय्यद है लुजूम के साथ तो वह लुजूमिया होगा। अगर उसमें जिस इत्तेसाल को जिक्र किया जा रहा है वह मुकय्यद हो इत्तेफाक के साथ तो वो इत्तेफाकिया है, और अगर वह किसी से भी मुकय्यद ना हो तो वह मुतलका है। मुत्तसिला में क्या बयान होता है? दो निस्बतों में इत्तेसाल। अगर यह इत्तेसाल मुकय्यद हो लुजूम के साथ तो वह लुजूमिया है, अगर यह इत्तेसाल मुकय्यद हो इत्तेफाक के साथ कि इत्तेफाकन ऐसा हुआ तो वह इत्तेफाकिया है, और अगर वह न लुजूम के साथ मुकय्यद हो न इत्तेफाक के साथ मुकय्यद हो तो वह मुतलका है। तो तीन किस्में हैं, लेकिन मातिन ने कितनी किस्में बना दी? दो किस्में। तो जवाब यह कि भाई मुतलका का कोई अलग वजूद है ही नहीं, यह एक बस अकली एहतमाल है कि इत्तेसाल मुकय्यद बिल लुजूम होगा या इत्तेसाल मुकय्यद बिल इत्तेफाक होगा या इत्तेसाल इन दोनों में से किसी के साथ भी मुकय्यद नहीं होगा। यह एक अकली एहतमाल है, वाकई में मुतलका का अलग वजूद ही नहीं है। वाकई में सिर्फ दो किस्म के इत्तेसाल हैं, या लुजूमिया या इत्तेफाकिया। मुतलका सिर्फ क्या है? एक अकली एहतमाल, यानी कोई ऐसा इत्तेसाल जिसमें ना लुजूम का अलाका हो न इत्तेफाक वाला अलाका हो, ऐसा है ही नहीं। यानी यूं कहो मुतलका वो अलग होता ही नहीं है इन दो से, इन्हीं के तहत वो पाया जाता है। क्या है? इन्हीं के तहत वो दाखिल है भाई, वाकई में इसका कोई अलग वजूद नहीं। जब और यहां पर वो किस्में बयान कर रहे हैं जिनका वाकई में वजूद है, दो निस्बतों में वाकई के अंदर या तो लुजूम वाला इत्तेसाल होगा या इत्तेफाक वाला इत्तेसाल होगा। अगरचे तकसीम में आप कहें जी दो चीजों में इत्तेसाल है, न यह मुकय्यद है लुजूम के साथ न यह मुकय्यद है इत्तेफाक के साथ, लेकिन वाकई के अंदर तो वो वाकई के अंदर वहां इत्तेसाल लुजूम वाला ही होगा या इत्तेफाक वाला ही होगा, तीसरी कोई सूरत ही नहीं है भाई। तो मुतलका का कोई अलग वजूद नहीं, ये जब भी पाया जाता है या तो किस सूरत में होगा? लुजूम वाली सूरत में होगा या इत्तेफाक वाली सूरत में होगा, अलहदा इसका कोई वजूद नहीं। तो लिहाजा यहां पर भी वो किस्में बयान कर रहे हैं जिनका वाकई में वजूद है, जिनका सिर्फ अकली एहतमाल है, अलग वजूद ही नहीं, उनका जिक्र नहीं कर रहे। बल्कि या यूं कहो कि मुतलका भी इन्हीं के तहत दाखिल है, क्योंकि मुतलका का भी वजूद वाकई में लुजूम में ही होगा या इत्तेफाक की सूरत में ही होगा, अलहदा इसका वजूद नहीं। तो ये इन्हीं के जिमन में पाया जाएगा, लिहाजा ये इन्हीं के तहत दाखिल है, तो इसका अलग वजूद नहीं है। आगे देखिए भाई, कौलुहू बि अलाकतिन, बताया था कि लुजूमिया में इत्तेसाल अगर इलाके की वजह से हो तो अलाका किसे कहते हैं, कहते हैं वह यह अमरुन बिसबबिही यस्तस्हिबुल मुकद्दमु तालिया। वह यह अमरुन, यह ऐसी चीज है बिसबबिही कि इसकी वजह से यस्तस्हिबुल मुकद्दमु, इस्तस्हबा यस्तस्हिबु के माने हैं साथ रखना, साथ रखना। वही अमरुन, यह अलाका ऐसी चीज है कि इस बिसबब ही इसकी वजह से यस्तस्हिबुल मुकद्दमु तालिया, मुकद्दम साथ रखता है ताली को, मुकद्दम
साथ रखता है
ताली। यह ऐसी चीज है जिसकी वजह से मुकद्दम ताली को साथ रखता है। तवज्जो है, अलाका भाई लुजूम वाला है, लुजूम का क्या माना, पहली चीज है तो दूसरी भी है। देखा ये अलाका, ये जो ताल्लुक है, इस ताल्लुक, ये जो लुजूम वाला ताल्लुक है, इसकी वजह से जो मुकद्दम है यानी पहला हिस्सा, ये ताली को अपने साथ रखता है, यानी इनमें अलाका है। सूरज निकलेगा तो दिन होगा, क्यों, क्योंकि इनमें ताल्लुक है लुजूम वाला। इस लुजूम वाले ताल्लुक की वजह से सूरज का निकलना अपने साथ किसको रखता है, दिन के होने को। सूरज जब भी निकलेगा क्या होगा, दिन होगा। तो अलाके से मुराद वो चीज है, वो सबब है जिसकी वजह से मुकद्दम के साथ ताली जरूर आता है, क्योंकि दोनों में कौन सा मसलन ताल्लुक है, इल्लत वाला, इल्लत है तो मालूल जरूर होगा। या दोनों मुतजाइफेन है, एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ है, जब एक है तो दूसरा जरूर होगा। या दोनों मालूल है एक ही इल्लत के, तो जब एक होगा तो दूसरा जरूर। तो जो भी ऐसी चीज जो सबब बने, बाइस बने कि दोनों एक पाया जाए तो दूसरा भी पाया जाए, उसको अलाका कहते हैं, यानी अलाका लुजूम, अलाका लुजूम। बाकी अलाके ये मोतबर ही नहीं इनके नजदीक, सिर्फ लुजूम वाला अलाका मोतबर है, तो वही मुराद है। तो कहते हैं कौलुहू बि अलाकतिन वही अमरुन बि सबबिही यस्तस्हिबुल मुकद्दमु तालिया, ये वो चीज है कि इसकी वजह से मुकद्दम साथ रखता है ताली को। कइल्लियति तुलुउ शम्सि लिवुजूदि नहारी, जैसे इल्लत होना तुलुउ शम्स का वजूद नहार के लिए। फी कौलिना, हमारे इस कौल में, कुल्लमा कानति शम्सु तालियातन फन्नहारु मौजूदुन, जब भी सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। देखो इनमें इल्लियत वाला ताल्लुक है, तो ये जो मुकद्दम है ये ताली यानी वजूद नहार को अपने साथ रखता है, यानी ये इनमें अलाका और ताल्लुक है। आगे भाई मतन पर आइए, भाई मतन पर। व मुनफसिलतुन, और शर्तिया मुनफसिला होगा, बताया शर्तिया मुत्तसिला होगा और मुनफसिला। मुत्तसिला में क्या बयान होता है, दो नस्बतों के दरमियान इत्तेसाल, और मुनफसिला में दो नस्बतों में इनफिसाल बयान होता है। कहते हैं वह मुनफसिलतुन, और शर्तिया मुनफसिला है। इन हुकीमा फीहा बितनाफिन नस्बतैनी औला तनाफीहिमा, जब हुक्म हो इसके अंदर दो नस्बतों में तनाफी यानी मुनाफात का, यानी मुनाफात का, औला तनाफी हिमा या अदम मुनाफात का। मुनाफात या इन्फिसाल एक ही बात है। शर्तिया मुनफसिला किसे कहते हैं, जिसमें दो नस्बतों में इन्फिसाल या अदम इन्फिसाल को बयान किया जाए कि इन्फिसाल है या इन्फिसाल नहीं है। इन्फिसाल है यह होगा मुजीबा में, और इन्फिसाल नहीं है ये किसमें होगा, सालिबा में। ये माना है कि वह मुनफसिलतुन, मुनफसिला जो है, इन हुकिमा फीहा, अगर उसमें ये हुक्म हो, बितनाफिन नस्बतैन, वो जो दो नस्बतें हैं यानी मुकद्दम और ताली में, उनमें मुनाफात का, औ ला तनाफीहिमा, या उन दो नस्बतों में अदम मुनाफात का, तो ये क्या है, मुनफसिला। सिदकं व किज़बन मअन, सिदक और किज़ब दोनों के एतबार से, वही अल हकीकियत, और यह हकीकिया है। भाई इधर देखिए, आगे तकसीम करने लगे हैं कि मुनफसिला तीन किस्म पर है, या हकीकिया होगा, या मानेअतुल जमा होगा, या मानेअतुल खुलुव होगा। खुलुवन, खला यखलु खुलुवन का माना खाली होना, याद रखो मुनफसिला हकीकिया वो है कि जहां दो निस्बतों का जमा होना भी मुमकिन ना हो और दोनों का उठ जाना भी मुमकिन ना हो। मुनफसिला हकीकिया क्या है? जिसमें दो निस्बतों का जमा होना भी, जमा होने में भी इन्फिसाल हो और उठने में भी इन्फिसाल हो, यानी दोनों न जमा हो सकती हैं और न दोनों उठ सकते हैं। जैसे मसलन मैं कहता हूं हादल आदद इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, ये वाला आदद जो है ये या तो जुफ्त है या ताक है। देखा एक ही आदत जुफ्त या ताक खुद नहीं हो सकता भाई, या जुफ्त होगा या ताक होगा। तो इन दोनों निस्बतों में ये दोनों निस्बतें जमा नहीं हो सकती। ये जो इस आदत की तरफ जुफ्त होने की निस्बत है और ये जो इस आदत की तरफ ताक होने की निस्बत है, ये दोनों निस्बतें जमा नहीं हो सकती। एक ही आदत जुफ्त भी हो और ताक भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों उठ जाएं, यानी कोई आदत ऐसा हो जो जुफ्त भी ना हो और ताक भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिदकं व किस्बन, सिद्क का माना है सच्चा होना और किस्ब का माना है झूठा होना। यानी सिद्क का आम आसान तर्जमा कर लें वजूद में, वजूदी, और किस्ब का तर्जमा कर लें अदम, न होना। देखो हाजल आदद, ये आदद या तो जौज होगा या फर्द होगा। देखो दोनों का होना जिक्र किया जा रहा है, वजूदी वजूदी, दोनों निस्बतें क्या हैं? वजूदी। कहते हैं ये जमा नहीं हो सकती। क्या जौज भी हो और ताक भी हो, ये एक ही आदत, ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों निस्बतें का किस्ब यानी आदम ले आओ, दोनों का आदम ले आओ, जुफ्त भी ना हो और ताक भी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सिदक के एतबार से भी जमा नहीं और किसब के एतबार से भी जमा। सिदक का क्या माना? यानी वजूदी, जो दोनों क्या हो, दोनों निस्बतें पाई जाएं। और किसब का क्या माना? आदमी हो, दोनों निस्बतें ना पाई जाएं। तो एक ही आदत जुफ्त हो और ताक हो, जैसे ये मुमकिन नहीं, इसी तरह एक ही आदत न जुफ्त हो और न ताक हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मुनफसिला हकीकिया है। मुनफसिला, मुनफसिला हकीकिया किसे कहते हैं? कि जिसमें दोनों निस्बतें वजूदन भी जमा ना हो सकें और आदमन भी जमा ना हो सकें। ये यूं कहें सिदकन भी जमा ना हो सकें और किस्बन भी जमा ना हो सकें। दोनों में से एक पाई जाएगी और दोनों ही उठ जाएं, दोनों ही ना पाई जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो दोनों में से एक का पाया जाना जरूरी है। यह है मुनफसिला हकीकिया। तो इस किस्म को हकीकिया कहते हैं। मुनफसिला की यह किस्म क्या कहलाती है? हकीकिया, जिसमें दोनों निस्बतें जमा भी नहीं हो सकती और दोनों उठ भी नहीं सकती। और दूसरी किस्म है मानेअतुल जमा, नाम ही बतला रहा है, वो निस्बतें जिनका जमा होना मना है, जमा होना मना हो, यानी जमा नहीं हो सकती। हां दोनों उठ सकती हैं, उठ सकती हैं। मसलन आप किसी चीज की तरफ इशारा करके कहते हैं हाज़ा शैउ इम्मा शजरुन औ हजरुन, यह चीज या तो दरख्त है या पत्थर है, यह चीज या तो दरख्त है या पत्थर है। देखो दोनों जमा नहीं हो सकते। एक ही चीज दरख्त भी हो और पत्थर भी हो, यह नहीं हो सकता भाई। तो दोनों जमा नहीं हो सकते। हां दोनों उठ सकते हैं, एक चीज दरख्त भी ना हो पत्थर भी ना हो, बल्कि किताब हो, किताब हो, इंसान हो, कोई और चीज हो, तो उठ सकती हैं दोनों। तो मानेअतुल जमा किसे कहते हैं? दोनों जमा तो ना हो सके लेकिन दोनों का उठना मुमकिन हो, तो इसको कहेंगे कि ये इनमें इन्फिसाल सिर्फ सिदक के एतबार से है, यानी वजूद के एतबार से। किस एतबार से? मुनफसिला की बात चल रही है ना, जिसमें क्या बयान होगा? इन्फिसाल, इन्फिसाल सिदकन भी हो और किस्बन भी हो, तो ये हकीकिया है, यानी जमा भी नहीं हो सकती और दोनों निस्बतें उठ भी नहीं सकती। और अगर सिर्फ जमा होने में इन्फिसाल है, जमा नहीं हो सकते लेकिन उठ सकती हैं दोनों, तो मालूम हुआ सिदकन इन्फिसाल है, किस्बन इन्फिसाल नहीं। तो सिर्फ सिदकन इन्फिसाल हो तो उसको क्या कहते हैं? मानेअतुल जमा, दोनों का जमा होना मना है। और तीसरी किस्म है मानेअतुल खुलुव, खला यखलु खुलुवन का माना खाली होना, मानेअतुल खुलुवी, यानी जिससे खाली होना मना हो, यानी दोनों का उठना मना हो, जमा हो सके दोनों, जमा हो सके। जैसे मसलन मैं कहता हूं जैद उन इम्मा फिल बहरी व इम्मा अल्लाह यगरका, जैद उन इम्मा फिल बहरी और इम्मा अल्लाह यगरका। जैद या तो समुंदर में है या डूब नहीं रहा, जैद या तो समुंदर में है या डूब नहीं रहा, दोनों जमा हो सकती हैं। जैद समुंदर में भी हो और डूब भी ना रहा हो, तैर रहा हो, उसको तैरना आता है, वो पानी पर तैर रहा है या वो किश्ती में सवार है, तो दोनों जमा हो सकती हैं। क्या थी दो नस्बतें? एक है जैद का समुंदर में होना, एक जैद का डूबना, जैद का न डूबना, जैद का न डूबना। तो जैद का समुंदर में होना और न डूबना, ये दोनों जमा हो सकते हैं। समुंदर में हो और न डूब रहा हो, तैर रहा हो या किश्ती में बैठा हो या किसी तख्ते पर बैठा हो जो उस तैर रहा है, लेकिन दोनों उठना मना है। कौन सा? समुंदर में न हो। कजिए में क्या जिक्र? समुंदर में हो, इसको उठा दें, समुंदर में न हो। और दूसरी निस्बत क्या है? डूब न रहा हो, इसको उठा दें, डूब रहा हो, डूब रहा हो। समुंदर में न हो और डूब रहा हो, यह नहीं हो सकता। समुंदर में नहीं है और डूब रहा है, भाई कैसे डूबता? तो इंसान पानी में है, पानी में नहीं है तो कैसे डूबेगा? तवज्जो है, मानियातुल खुलू की बात कर रहा हूं, जो जमा तो हो सकती हैं लेकिन दोनों उठ नहीं सकती। जैद उन इम्मा फिल बहरे व इम्मा अल्लाह यगरका, जैद या तो समुंदर में है, देखो समुंदर में होने को जिक्र कर रहा हूं, व अल्लाह यगरका और या डूब नहीं रहा, न डूबने को जिक्र कर रहा हूं, समुंदर में होना और न डूबना ये दोनों जमा हो सकते हैं, लेकिन दोनों को उठा दो, होने की जगह न होना ले आओ, समुंदर में होना इसकी जगह क्या ले आओ? न होना। जैद समुंदर में न हो और न डूबने की जगह डूबना ले आओ, जैद समुंदर में न हो और डूब रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। भाई डूबता तो इंसान कहां है? पानी में डूबता है, जब पानी में नहीं है तो कैसे डूबेगा? ये जो जैद उन इम्मा फिल बहरी व इम्मा अल्लाह यगरका, ये मानियातुल खुलू है, ये दोनों जमा तो हो सकते हैं लेकिन दोनों उठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम क्या? मुनफसिला वो कजिया है जिसमें दो नस्बतों में इन्फिसाल बयान होता है और इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल बयान होता है। अगर ये इन्फिसाल और आदम इन्फिसाल सिद्क और किसब दोनों एतबार से हो, यानी वजूद और आदम दोनों एतबार से हो, तो उसको कजिया मुनफसिला हकीकिया कहते हैं, और अगर सिर्फ जमा को होने के एतबार से इन्फिसाल है तो फिर वो मानियातुल जमा है, और अगर खाली होने के एतबार से इन्फिसाल है तो वो मानियातुल खुलू है। और फिर यह भी आपने गौर किया कि जो कजिया हकीकिया है यह मानियातुल जमा भी है, मानियातुल खुलू भी है, दोनों है। यह अदद या तो जौज है या फर्द है, यह दोनों जमा भी नहीं हो सकते तो मानियातुल जमा भी है, और दोनों उठ भी नहीं सकते, ना जुफ्त हो ना ताक हो, कोई अदद ऐसा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, तो यह मानियातुल खुलू भी है। तो कजिया हकीकिया जो होता है वो मानियातुल जमा और मानियातुल खुलूब दोनों होता है, जबकि एक सिर्फ मानियातुल जमा होगा और एक सिर्फ मानियातुल खुलूब होगा, तो तीन किस्में बन गई। अब देखिए भाई किताब पर कहते हैं, व मुनफसिलतुन इन हुकिमा फीहा बितनाफी निस्बतैनी औला तनाफी हिमा, और शर्तिया मुनफसिला होगा अगर उसमें हुक्म हो दो निस्बतों के दरमियान मुनाफात का, औला तनाफी हिमा या दो नस्बतों में अदम मुनाफात का, सिदकों व किज़्बन मान, सिदक और किज़्ब दोनों के एतबार से, ये यूं कहें वजूद और अदम दोनों के एतबार से, वही अल हकीकियतु और वो हकीकिया है, और सिदकन फकत या सिर्फ सादिकाने में मुनाफात हो, यानी उसमें हुक्म होगा तनाफी या ला तनाफी का सिर्फ कौन सी सूरत में? सिदकान सादिक आने की सूरत में फकत, यानी जमा नहीं हो सकते, फमानियातुल जमा तो वो मानियातुल जमा है, औ किज़्बन यानी उसमें पीछे इबारत को सारे को जोड़ें, अगर उसमें हुक्म हो मुनाफात और आदम मुनाफात का किज़्बन फकत, सिर्फ किस सूरत में? किज़्ब की सूरत में, फमानियातुल खुलू तो वो मानियातुल खुलू है। बात समझ में आ गई? अब आइए शरा पर। कौलुहू बितनाफिन निस्बतैनी, मुसन्निफ का कौल बितनाफिन निस्बतैन, भाई इधर देखिए मुनफसिला में दो निस्बतों में इनफिसाल बयान होगा। यहां पर भी वही चार सूरतें बनेंगी। ये दो निस्बतें जिनमें इनफिसाल बयान हो रहा है, या तो दोनों सुबूती होंगी या दोनों सलबी होंगी, या पहली सुबूती होगी दूसरी सलबी, या पहली सलबी होगी और दूसरी सुबूती। सबा उनका नतिन निस्बतानी सुबूती यतैनी औ सलबी यतैनी औ मुख्तलिफतैनी, बराबर है कि वो दो निस्बतें जो हैं दोनों सुबूती हों या सलबी हों या दोनों मुख्तलिफ हों। फइनकान अलहुक्म फीहा बितनाफी जी, अब ये बताने लगे मुनफसिला में इन्फिसाल बयान होगा, अगर इन्फिसाल का सुबूत हो तो मुनफसिला मुजीबा है, और अगर इन्फिसाल की नफी हो तो वो मुनफसिला सालिबा है। तो कहते हैं फइनकान अलहुक्म फीहा बितनाफी हिमा, अगर हुक्म हो मुनफसिला के अंदर दोनों निस्बतों की मुनाफात का, फहिया मुनफसिलतुन मुजिबतुन, तो ये मुनफसिला मुजिबा है। व इनकान बिसल्बी तनाफी हिमा, और अगर इन दोनों में मुनाफात का सल्ब हो इसमें, फहिया मुनफसिलतुन सालिबतुन, तो ये मुनफसिला सालिबा है। तो मुनफसिला सालिबा में क्या होता है? इन्फिसाल का सल्ब होता है, बताया जाता है इनमें इन्फिसाल नहीं है। जब इन्फिसाल नहीं है मालूम हो इत्तिसाल है, तो मुनफसिला सालिबा जिमनन क्या होता है? मुतसिला मुजिबा होता है, भाई इत्तिसाल का सुबूत होता है उसमें। कौलुहु वही अल हकीकियतु जी, कहते हैं फल मुनफसिलतुल हकीकियतु मा हुकिमा फीहा बितनाफिन निस्बतैनी फिस्सिद्क वल किस्बी, मुनफसिला हकीकिया वो है जिसमें हुक्म लगाया जाए दोनों निस्बतों के मुनाफात का, सिदक और किज़ब, यानी दोनों सूरतों में। नहव कौलिना, जैसे हमारा यह कौल, इम्मा अय्यकूना हादल आददु ज़ौजन व इम्मा अय्यकूना हादल आददु फर्दन, कि यह आदद या तो ज़ौज है या ये आदद फर्द है। औ हुकिम फीहा बिसल्बी तनाफिन निस्बतैनी फिस्सिद्क वल किस्बी, या उसके अंदर हुक्म हो दो निस्बतों में मुनाफात की नफी का, फिस्सिद्क वल किस्बी, सिदक और किज़ब दोनों सूरतों में। नहु कौलिना, जैसे हमारा यह कौल है, लैसा अलबत्ता इम्मा अन यकूना हादल अददु ज़ौजन औ मुनक़सिमन बिमुतसावियैनी, ऐसा नहीं है कि यह अदद या तो ज़ौज हो या ये तकसीम होता हो दो बराबर हिस्सों में, ये तकसीम होता हो दो बराबर हिस्सों में, यानी इन दो निस्बतों में मुनाफात नहीं है, ये दोनों पाई जाएंगी। अदद ज़ौज भी एक है, अदद का ज़ौज होना और दूसरा है दो बराबर हिस्सों में तकसीम होना। देखो दरमियान में औ ले आए, क्या ले आए? अदद का ज़ौज होना या इसका दो बराबर हिस्सों में तकसीम होना, इन दोनों में मुनाफात नहीं है। लैसा अलबत्ता, नफी कर दिया नहीं, जब ज़ौज होगा तो तकसीम दो बराबर हिस्सों में होगा कि नहीं होगा, तो दोनों में मुनाफात नहीं है। तो देखो लैसा अलबत्ता इम्मा अन यकूना हादल अददु ज़ौजन औ मुनक़सिमन बिमुतसावियैनी, ऐसा नहीं है कि अदद या तो ज़ौज हो या दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो। वल मुनफसिलतुल मानिअतुल जमई, और वो मुनफसिला जो मानिअतुल जमा है, मा हुकिम फीहा बितनाफिन निस्बतैनी औला तनाफी हिमा फिस्सिद्क फकत, वो है जिसमें हुक्म हो दो निस्बतों के दरमियान तनाफी या ला तनाफी का, फिस्सिद्क फकत, सिर्फ सिदक के अंदर तनाफी या ला तनाफी का हुक्म हो। तनाफी का हुक्म होता है मुजीबा में और ला तनाफी का हुक्म किस में होता है? सालिबा में। इसलिए दोनों को हर जगह इकट्ठा जिक्र कर रहे हैं, मुजीबा और सालिबा दोनों को। तो कहते हैं वल मुनफसिलतुल मानिअतुल जमई, और मुनफसिला मानिअतुल जमा मा वो कजिया है, हुकिम फीहा बितनाफिन निस्बतैनी औला तनाफी हिमा फिस्सिद्क फकत, जिसमें दो निस्बतों में मुनाफात या अदम मुनाफात हो सिदक में फकत, सिर्फ सिदक में। नहु हादा शैउ इम्मा अन यकूना शजरन व इम्मा अन यकूना हजरन, ये शय या तो शजर है दरख्त है या पत्थर है। तो ये देखो दोनों जमा नहीं हो सकते, हां दोनों उठ सकते हैं, कोई चीज ना शजर हो ना हजर हो, कोई तीसरी चीज हो, किताब है कलम है इंसान है। वल मुनफसिलतुल मानिअतुल खुलुवी, और मुनफसिला मानिअतुल खुलुव जो है, मा हुकिम फीहा बितनाफिन निस्बतैनी औला तनाफी हिमा फिल किस्बी फकत, जिसमें दो नस्बतों के दरमियान तनाफी या आदम तनाफी हो, फिल किस्ब फकत सिर्फ किस्ब में यानी न सादिकाने में यानी आदम की सूरत में, नहु इम्मा अन यकूना ज़ैदुन फिल बहरी व इम्मा अल्ला यगरका, कि या तो जैद जो है समुंदर में है या वो गर्क नहीं हो रहा, वो डूब नहीं रहा। कौलुहू औ सिदकन फकत अल्ला फिल किस्बी। अच्छा भाई, इन्होंने क्या बताया? मानेअतुल जमा किसे कहते हैं? जिसमें मुनाफात या अदम मुनाफात सिर्फ सिदक वाली सूरत में हो, दोनों सादिक नहीं आ सकते यानी दोनों जमा नहीं हो सकते। तवज्जो है, मुनाफात या अदम मुनाफात मैं दो जिक्र कर रहा हूं, मुनाफात मुजिबा में और अदम मुनाफात सालिबा। तो जिसमें मुनाफात या अदम मुनाफात जिक्र हो सिर्फ किस सूरत में? सिदक वाली सूरत में। तवज्जो है, याद रखो, इसमें आपको बताएंगे कि ये मानेअतुल जमा के दो माना किए जाते हैं। मानेअतुल जमा के दो माना किए जाते हैं। एक को मानेअतुल जमा बिल मानल अखस कहते हैं और एक को मानेअतुल जमा बिल मानल आहम कहते हैं। आसान है, इधर देखिए, मानेअतुल जमा में क्या बयान होगा? दोनों जमा नहीं हो सकते, दोनों उठ सकते हैं, दोनों जमा नहीं हो सकते, अलबत्ता दोनों उठ सकते। एक सूरत यह, जानिब मुखालिफ का भी हुक्म बता दिया, जानिब मुआफिक यानी सिदक में क्या बताया? जमा नहीं हो सकते, अलबत्ता दोनों उठ सकते हैं। और बाज औकात जानिब मुखालिफ का कोई हुक्म नहीं लगाया जाता, सिर्फ यह कहते हैं दोनों जमा नहीं हो सकते, फिर आगे दोनों उठ सकते हैं या उठ नहीं सकते इस बारे में खामोशी होती है। तो उसमें दोनों इहतमाल आ गए, हो सकता है दोनों उठ भी ना सकें या हो सकता है दोनों उठ सकते हैं। तवज्जो है, मानेअतुल जमा में क्या होता है? जमा नहीं हो सकते। जानिब मुखालिफ कभी जानिब मुखालिफ का भी हुक्म साथ बताते हैं, क्या कहते हैं? जमा नहीं हो सकते और दोनों उठ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सूरत आ गई, जमा नहीं हो सकते और उठ सकते हैं। दूसरी सूरत यह है, सिर्फ यह बयान करते हैं जमा हो सकते हैं, जानिब मुखालिफ नहीं बताते कि उठ सकते हैं या उठ। जब जानिब मुखालिफ पर कोई हुक्म नहीं लगाया तो उसमें तो दोनों इहतमाल आ गए, हो सकता है वो दोनों उठ सकें, हो सकता है उठ भी ना सकें। तो एक में दोनों सूरतें आ गई, मानेअतुल जमा में एक में जानिब मुखालिफ का क्या हुक्म बताया? जमा नहीं हो सकते और उठ सकते हैं, इसमें सिर्फ एक सूरत आई। दूसरी तारीफ करते हैं मानेअतुल जमा की, कि मानेअतुल जमा वो है जिसमें दो जमा ना हो सकें, दूसरी जानिब का बताया ही नहीं, उसमें दोनों इस्तेमाल आ गए, हो सकता है उठ सकें, हो सकता है ना उठ। तो इसमें इस मानेअतुल जमा में दो सूरतें आ गई और पिछले मानेअतुल जमा में एक सूरत आई थी, उसमें जानिब मुखालिफ की नफी की थी, इसमें जानिब मुखालिफ की नफी नहीं की। तो जानिब मुखालिफ हो सकता है उसकी नफी हो सकता है नफी ना, दोनों सूरतें आ गई। तो यह वाला आम हुआ और वो वाला अखस हुआ, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं ऐ ला फिल किस्बी यानी किस्ब में नहीं, यानी सिदक में तो जमा नहीं हो सकते, सिदकन फकत ऐ ला फिल किस्बी यानी जमा होना मना है, ला फिल किस्बी किस्ब में नहीं यानी किस्ब में दोनों जमा हो सकते हैं। एक सूरत, जानिब मुखालिफ का भी हुक्म बता दिया, क्या बताया? दोनों जमा नहीं हो सकते लेकिन उठ सकते हैं, किस्ब में जमा हो सकते हैं, किस्ब में जमा, सिर्फ सिदक में जमा नहीं हो सकते, किस्ब में जमा हो सकते हैं, दोनों उठ सकते हैं। एक सूरत। दूसरी, और माकत नजर अनिल किस्बी यानी कत नजर किस्ब से, यानी जमा नहीं हो सकते, दोनों का उठना या ना उठना उससे कत नजर, तो उसमें दोनों सूरतें आ गई। ये माना हत्ता जाज अयतमिया नस्बतान फिल किस्बी व अल्लाह यजतमिया, यहां तक कि जायज होगा उन दोनों नस्बतों का जमा होना किस्ब में, जायज होगा या नहीं, मुमकिन होगा, यहां तक कि मुमकिन होगा कि वो दोनों निस्बतें जमा हो जाएं किस्ब में, व अल्लाह यजतमा और या जमा ना हो, भाई दोनों सूरतें आ गई। व युकालु लिल मानल अव्वली मानेअतुल जमअ बिल मानल अखसी, और पहले माना को कहते हैं मानेअतुल जमअ बिल मानल अखस, व सानी मानेअतुल जमअ बिल मानल अअमी, और दूसरे को मानेअतुल जमअ बिल मानल अअम कहते हैं। कौलुहू औ किस्बन फकत, मानेअतुल खुलू में क्या होगा? मुनाफात या अदम मुनाफात सिर्फ किजब की सूरत में आएगी, यानी दोनों का उठना मना है, दोनों इकट्ठे उठ नहीं सकते, जमा हो सकते हैं। तो ये जो मानियातुल खुलूब है ये भी दो किस्म पर है, एक मानियातुल खुलूब बिल मानल अखस और एक मानियातुल खुलूब बिल मानल अहम। क्यों कहते हैं इसमें जानिब मुखालिफ का अगर हुक्म बता दें, जानिब मुखालिफ से नफी कर देंगे तो एक सूरत, और दूसरा यह है जानिब मुखालिफ का हुक्म ही ना बयान किया जाए तो उसमें दोनों सूरतें आ जाएंगी। मानियतुल खुलूब में क्या बताया,
दोनों उठ नहीं सकते,
कि मुनाफात और अदम मुनाफात सिर्फ किजब की सूरत में है। तो आगे जानिब मुखालिफ देखो, एक सूरत में जानिब मुखालिफ भी बताएंगे कि मानियतुल खुलूब क्या है जिसमें मुनाफात और अदम मुनाफात किजब की सूरत में है, सिदक की सूरत में नहीं है। देखो सिदक वाली सूरत भी बता दी, यानी दोनों से खाली होने में इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल है, जमा होने में इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल नहीं। यानी किजब की सूरत में क्यों से किजब जिसमें दोनों उठ जाएं, दोनों से खाली हो जाए, किजब की सूरत में तो इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल है, लेकिन सिदक की सूरत में इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल नहीं है। एक सूरत, दूसरी तरफ का हुक्म बता दिया कि सिदक की सूरत में इन्फिसाल या आदम इन्फिसाल नहीं है, और दूसरी सूरत यह है कि जानिब मुखालिफ यानी सिदक को बयान ही ना किया जाए, सिर्फ यह कहा जाए कि यह मुनाफात और आदम मुनाफात सिर्फ किस सूरत में है, किजब की सूरत में है। भाई सिदक की सूरत में उसके बारे में कुछ नहीं बताया, हो सकता है उधर भी मुनाफात या आदम मुनाफात हो सकता है ना हो, तो उधर दो इहतमाल आ गए। तो एक सूरत में दूसरी जानिब भी जिक्र कर दी जाती है तो उसमें सिर्फ एक सूरत आई, और एक में दूसरी जानिब बयान ही नहीं की गई तो उसमें दो सूरतें आ गई, तो वो आम हुआ। किस तरह, एक तारीफ क्या होगी मानियतुल खुलू की, दो नस्बतों में मुनाफात या आदम मुनाफात हो किजब की सूरत में, ना के सिदक की सूरत में। देखा सिदक को भी बयान कर दिया। दूसरी तारीफ क्या होगी कि दो नस्बतों में मुनाफात या आदम मुनाफात होगा किजब की सूरत में, सिदक को जिक्र ही नहीं किया, सिदक की सूरत में होगा या नहीं, उसमें दोनों इहतमाल आ गए, हो सकता है हो सकता है ना हो, तो वो आम हुआ, और जिसमें एक सूरत हुई वो आखास हुआ। बात समझ भी आ गई। तो कहते हैं अलाफ सिदकी, यानी किजब में है सिदक में नहीं है एक सूरत, और माकत आई नजर यान हो या सिदक से कत आई नजर, कि सिदक में है या नहीं है उससे कत आई नजर है। तो वल अवल मान यातुल खुलू भी बिल मान अल अखसी वसानी बिल मान अल आमी, तो पहला जो है मान यातुल खुलू बिल मान अल अखस है और सानी मान यातुल खुलू बिल मान अल आम है। आगे देखिए मतन देखिए, कहते हैं वकुल्लुम मिन्हुमा इनादियतुन इनकानत तनाफी लिजातयिल जुज़ऐनी व इल्ला फत्तिफाकियतुन। भाई मुत्तसिला में भी दो किस्में थीं, एक लुजूमिया और एक इत्तिफाकिया, जबकि मुनफसिला में भी दो किस्में हैं, एक है इनादिया और एक है इत्तिफाकिया, एक है इनादिया और एक इत्तिफाकिया। भाई वहां मुत्तसिला में इत्तिसाल बयान हो रहा था तो फिर वहां था इत्तिसाल लाजमी होगा या लाजमी नहीं, मुनफसिला में इन्फिसाल बयान होता है तो बताएंगे ये इन्फिसाल लाजमी है या लाजमी नहीं। अगर इन्फिसाल लाजमी हो उसको इनादिया कहते हैं, इनाद का माना है मुखालफत, इनाद का क्या माना, यानी दो नस्बतें ऐसी हैं कि उनमें ऐसी मुखालफत है कि वो जमा हो ही नहीं सकती, तवज्जो है कि वो जमा हो ही नहीं सकती। हादल आदद इम्मा जौजुन औ फर्दुन, ये जौज और फर्द की नस्बत में इनकी जात ही एक दूसरे के मुखालिफ है, ये कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते कहीं पर भी, तो इनकी जात में ही क्या है मुखालिफत है, तो इसको इनादिया कहेंगे। क्या कहेंगे? और अगर कभी दो चीजों में इन्फिसाल को बयान किया जाए लेकिन उनकी जात में इन्फिसाल नहीं है, इत्तेफाकन वो दोनों में इन्फिसाल आ गया है, तो उसको इत्तेफाकिया कहेंगे। क्या कहेंगे? मसलन देखो, एक आदमी उसका काला रंग है, काला रंग है और वो कातिब नहीं है, रंग काला यानी हबशी है और कातिब नहीं है। अब आप कहते हैं हादर रजुल इम्मा अस्वदु औ कातिबुन, हादर रजुलो اسود او تو مجھے بتائیے ایک ہے اس کا کالا ہونا کالا تو یہ ہے اور کاتب یہ ہے کاتب نہیں ہے یہ توجہ ہے ایک آدمی ہے اس کو کتابت نہیں آتی کالا ہے اور کتابت نہیں آتی تو میں کہتا ہوں ہاذا رجل اما اسود او کاتب یہ آدمی یا تو کالا ہے یا اسود دونوں نہیں ہو سکتے آپ بھی مجھے بتائیے یہ دونوں ہے کالا بھی ہے اور کاتب بھی ہے کاتب نہیں ہے کاتب نہیں ہے تو اب میں انفصال بیان کر رہا ہوں کہ اس آدمی کے کالا ہونے میں اور اس کے کاتب ہونے میں انفصال ہے دونوں نہیں ہو سکتے یعنی اس وقت دونوں نہیں ہیں ہاذا رجل اما اسود او کاتب یا آدمی یا تو کالا ہے یا کاتب ہے دو نسبتوں میں انفصال بیان کیا یا نہیں کیا تو کیا اس کے کالا ہونے کے ساتھ کاتب نہ ہونا ضروری ہے نہیں کبھی کوئی کالا آدمی ہوتا ہے اور وہ کاتب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہاں جو دونوں میں انفصال آیا وہ ان کی ذات مخالف ہے اتفاقاً آ گیا اتفاقاً آ گیا توجہ ہے تو میں کیا کہتا ہوں حاضر رجل اما اسود او کاتب تو یہاں جو انفصال آیا وہ اتفاقاً آیا کالا اور کاتب ہونا ان دونوں میں انفصال نہیں ہے اور حاضر عدد اما زوج او فرد یہاں ان کی ذات میں ہی انفصال ہے کسی جگہ بھی یہ زوج اور فرد اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک اگر کوئی چیز زوج ہوگی تو فرد نہیں ہوگی اور فرد ہوگی تو زوج نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وکل منہما عنادیتن اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے کل منہما ہے من منہا ہے ہاں من ہاں منہا ہونا چاہیے وکل منہا اور ان میں سے ہر ایک یہ تینوں بھائی یہ حقیقیہ مانعت الجمع اور مانعت الخلو تو تین بن گئے اور تین جو ہے بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں واحد مونس تو فمین ہا واحد مونس کی زمین لوٹائیں گے وہ کل مین ہا اور ان میں سے ہر ایک جو ہے عنادیتن یا تو وہ کیا ہوگا عنادیہ ہوگا انکانت تنافی لذات تیل جز عینی اگر جو منافات ہے وہ دونوں جزوں کے ذات کی وجہ سے ہو دونوں جز یعنی مقدم اور تالی مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے اگر دونوں میں منافات ہے اور جدائی ہے تو اس کو کیا کہیں گے عنادیہ وَإِلَّا فَاتِّفَاقِيَتٌ اور اگر ایسا نہ ہو ذات کی وجہ سے منافات نہ ہو تو اس کو اتفاقیہ کہیں گے لِذَاتَ يَلْجُزْئَيْنِ اصل میں تھا لِذَاتَيْنِ تثنیہ ہے دو ذاتیں پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور یا کو پھر کسرہ کی حرکت دی اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وکل منہا اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ عنادیہ ہوگا اگر منافات جو ہے دونوں جز یعنی مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے ہو یعنی ان کی ذات میں منافات ہو وہ الا اور اگر ایسا نہ ہو فاتفاقیتن تو پھر وہ اتفاقیہ ہے اچھا آئیے آگے شرح دیکھیے بھائی قوله لذات الجزئین اے ان کان المنافات بین الطرفین یعنی اگر وہ جو منافات ہے دو طرفین میں ای المقدم و التالی یعنی کہ مقدم اور تالی بھائی منفصلہ کی بات چل رہی ہے اور منفصلہ میں دونوں جزوں میں انفصال کو بیان کیا جاتا ہے اور انفصال یعنی منافات یعنی منافع ایک ہی بات ہے تو اگر منافات جو دونوں طرفین میں ہیں یعنی مقدم اور تالی میں منافات ناشئتا عن ذاتہما وہ ایسی منافات ہے جو پیدا ہونے والی ہے ان دونوں کی ذات سے فی ای مادت تحققا جس مادہ میں بھی یہ دونوں پائے جائیں تحققا تثنیہ کا صیغہ ہے دیکھو منافات مقدم اور تالی ھذا العدد اما زوج او فرد دیکھو یہ زوج اور فرد ان کی ذات ہی میں منافات ہے یہ جہاں بھی پائے جائیں گے اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں ای ان کان المنافات بین الطرفین ای المقدم والتالی منافات ناشئتا عن ذاتہما فی ای مادت تحققا یعنی اگر وہ جو منافات ہے دو طرفین یعنی مقدم اور تالی کے درمیان وہ ایسی منافات ہے جو پیدا ہونے والی ہے عن ذاتہما ان دونوں کی ذات سے فی ای مادت تحققا جس مادے میں بھی یہ پائے جائیں کل منافات بین الزوجیت والفردیت جیسے کہ جفت ہونا اور طاق ہونے کے اندر منافات ہے لا من خصوص المادتی نہ کہ کسی خاص مادے کے اندر نہ کہ کسی خاص مادے کے اندر یعنی اگر منافات ऐसी है जो जात से पैदा हो रही है, यानी जात की वजह से है। किसकी वजह से है? जात की वजह से है। आगे चलकर बयान करेंगे, इसको इनादिया कहेंगे, जो जात की वजह से है। और अगर जात की वजह से नहीं है, किसी खास मादे की वजह से है, खास खास चीज की वजह से है। मसलन जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, एक काला आदमी है, हबशी है, लेकिन कातिब नहीं है। अब मैं कहता हूं हाजर रजुलो इम्मा अस्वदु औ कातिबुन, तो ये जो मुनाफात आई काला होने में और कातिब होने में, ये हर जगह होती है, ये खास इस फर्द में है, खास इस फर्द, खास इस मादे के अंदर है, तो ये मालूम हुआ। और जगह इनकी जात में मुनाफात नहीं है। तो कहते हैं ला मिन खुसूसिल मादती, न ये कि वो मुनाफात जो है किसी खास मादे के अंदर हो। कल मुनाफाती बैन सवादी वल किताबती, जैसे कि मुनाफात है काला होने और कातिब होने में। फी इंसानी, एक ऐसे इंसान में, यकूनु अस्वद वगैरह कातिबिन, जो काला तो है या और कातिब नहीं है। अव यकूनु कातिबन वगैरह अस्वदा, या कातिब तो है लेकिन अस्वद नहीं है, यानी दोनों में से एक चीज पाई जा रही है। तो फल मुनाफात बैन तरफ़ै हाज़िहिल मुनफसिलती, तो जो मुनाफात है इन इस मुनफसिला की दोनों तरफ, यानी मुकदम और ताली में, वाक़ियतुन लाली ज़ातेहिमा, वो वाक़े है इनकी जात की वजह से नहीं, बल बिहसब खुसूसिल मादती, बल्कि इस खास मादे की वजह से है। इद कद यजतमिउ सवाद वल किताबत फिस सिद्क़, इसलिए क्योंकि कभी कभार सवाद और किताबत सिदक में भी जमा हो जाते हैं, कि एक ही आदमी काला भी हो और कातिब भी हो। और फिल किस भी, या किसब में भी जमा हो जाते हैं, कि आदमी एक एक आदमी काला भी ना हो और कातिब भी ना हो। भाई अगर इजाबी निस्बत है तो सलबी ले आओ, सलबी है तो पहले में क्या था, काला है कातिब नहीं। मैं कहता हूं यह आदमी या तो काला है या कातिब है, दोनों में से एक चीज था तो मुनाफात है, लेकिन यह मुनाफात जात में नहीं है। कहीं ये दोनों सिदक में भी जमा हो जाएंगी, एक ही आदमी काला भी हो और कातिब भी हो, और कभी किसब में भी जमा हो जाएंगी। कैसे, काला भी ना हो और कातिब भी ना हो, काला भी ना हो और कातिब भी ना हो, दोनों का किसब लाओ ना, दोनों को आदमी बना दो, काला भी ना हो और कातिब भी ना हो, गोरा आदमी है लेकिन कातिब नहीं है। यह माना है इस कद यज तमियो सवाद वल किताबत फिस सिद्क या फिल किस भी फी मादतिन उखरा, इसलिए क्योंकि कभी सवाद और किताबत जो है वो सिदक में जमा हो जाते हैं, और फिल किस भी या सिर्फ किसब में, फी मादतिन उखरा किसी दूसरे मादा में, यानी किसी दूसरे फर्द में। फहादिही मुनफसिलतुन हकीकियतुन इतफाकियतुन, तो ये मुनफसिला हकीकिया इतफाकिया है। वतिल का मुनफसिलतुन इनादियतुन, और वह मुनफसिला इनादिया है। कौन सा मुनफसिला इनादिया है, जो जात की वजह से हो, जैसे हादल आददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन, ये कहीं भी जमा नहीं हो सकते, इनकी जात ही इन्फिसाल और मुनाफात को चाहती है। और कभी खास मादे की वजह से इन्फिसाल आ जाता है, उसको क्या कहेंगे, मुनफसिला इत्तेफाकिया कहेंगे। क्या कहेंगे, मुनफसिला हकीकिया कहेंगे। तवज्जो है, इन्होंने कहा मुनफसिलतुन हकीकियतुन इत्तेफाकियतुन, भाई देखिए ना, इधर देखिए, इन्होंने कहा कि हकीकिया मानियातुल जामा मानियातुल खुलूफ, ये तीनों जो हैं इनादिया भी हो सकते हैं और इत्तेफाकिया भी, इनादिया भी और इत्तेफाकिया। अगर हकीकिया है और दोनों की जात में ही मुखालिफत है तो हकीकिया इनादिया हो जाएगा, जैसे हाजल आददु इम्मा ज़ौजुन औ फ़र्दुन। और मानियातुल जामा को ले आओ, हाजर शय ओ इम्मा शजरुन औ हजरुन, देखो शजर और हजर इनकी जात में मुनाफात है, ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते, तो ये मानियातुल जमा इनादिया हुआ, मानियातुल जमा इनादिया हुआ। तवज्जो है, और हाजल आदद इम्मा सऊजुन औ फर्दुन, ये हकीकिया इनादिया हुआ। और मानियातुल खुलू ले आओ, जैदुन इम्मा फिल बहरी व इम्मा अल्ला यगरका, और ये क्या है, ये मानियातुल खुलू है इनादिया, इनादिया क्या है, क्योंकि समुंदर में ना हो और डूब जाए انکی ذات میں عناد ہے، مخالفت ہے، یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے، سمندر میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبے گا تو سمندر میں، تو یہ مانع الخلو کیا ہے؟ عنادیہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ دونوں سے خالی ہو جائے، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو تینوں مثالیں پیچھے ذکر کی تھیں، حقیقیہ، مانعات الجمع اور مانعات الخلو کی، یہی تینوں مثالیں ہیں، حقیقیہ عنادیہ کی بھی، مانعات الجمع عنادیہ کی بھی، اور مانعات الخلو عنادیہ کی بھی. جبکہ حقیقیہ اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے، اور مانعات الجمع اتفاقیہ بھی ہو سکتا ہے، اور مانعات الخلو بھائی اتفاقیہ بھی، تو تینوں میں جیسے تینوں عنادیہ ہو سکتے ہیں، تینوں اتفاقیہ بھی ہو سکتے ہیں. کون کون سے؟ حقیقیہ اتفاقیہ، مانعات الجمع اتفاقیہ، اور مانعات الخلو اتفاقیہ. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک ہی مثال سب کے لیے بن جائے گی. دیکھو وہ آدمی، وہ کالا آدمی، ھذا الرجل اما اسود او کاتب. مجھے بتائیے یہ آدمی جو ہے، یہ صرف یا تو کالا ہے یا صرف کاتب ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے، دوسری نہیں. دوسرے تو یہ حقیقیہ اتفاقیہ ہوا، دونوں میں سے ایک چیز ہے نا. تو حاضر رجل اما اسود او کاتب. مجھے بتاؤ اسود اور کاتب دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ اس میں جمع ہے دونوں میں، ایک چیز ہے نا، یا کالا ہے یا کاتب ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، حاضر رجل اما اسود او کاتب، تو دونوں میں سے ایک چیز ہے یا دونوں ہیں؟ ایک چیز ہے، دونوں میں انفصال ہے، دونوں چیزوں میں انفصال ہے. حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقیہ میں منافات اور عدم منافات، صدق اور کذب دونوں صورتوں میں ہوتی ہے. دونوں چیزیں جمع بھی نہیں ہو سکتی، دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی. تو یہ آدمی صرف کالا ہے، کاتب نہیں. میں کہتا ہوں ھذا الرجل اما اسود او کاتب، یہ آدمی یا تو کالا ہے یا اسود. مجھے بتائیے یہ دونوں ہیں اس میں؟ دونوں نہیں ہیں، دونوں نہیں. معلوم ہوا دونوں جمع نہیں ہو سکتی اس میں، ایک ہے اس میں، اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی. یہ کالا بھی نہ ہو اور کاتب بھی نہ ہو. نہیں نہیں، یہ کالا تو ہے بھائی، تو دونوں جمع بھی نہیں اور دونوں اٹھ بھی نہیں رہی. توجہ ہے؟ یہ آدمی کالا ہے اور کاتب نہیں ہے. یہ یوں کہو کاتب ہے اور کالا نہیں، دونوں میں سے ایک اس کے اندر مان لو. اب میں کہتا ہوں یہ آدمی یا تو کالا ہے یا کاتب ہے، میری بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے. اور یہ دونوں جمع ہیں؟ یہ دونوں جس میں جمع نہیں ہو سک، جمع نہیں ہے اس وقت، اس میں دونوں جمع، اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں رہے. یہ نہ اسود ہو نہ کاتب ہو، ایسا ہے نہیں، ایک تو ہے ان میں سے. یہ تو یہ حقیقیہ کی مثال بن گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہی مثال مانعات الجمع کی بھی ہے. کیسے؟ جی دونوں جمع نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہے نا، دونوں تو نہیں ہے. ھذا الرجل اما اسود او کاتب، ایک ہے نا، دونوں تو نہیں ہے. تو یہ مانعات الجمع بھی ہے، اور مانعات الخلو بھی یہی ہے بھائی، دونوں میں سے ایک ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو یہ ہے، تو دونوں اٹھ گئے؟ نہیں، دونوں نہیں اٹھ رہے، ایک تو ہے. تو ایک ہی مثال، حقیقیہ اتفاقیہ، مانعات الجمع اتفاقیہ، اور مانعات الخلو اتفاقیہ، تینوں کی ایک ہی مثال بن جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بھائی، آپ کو میں نے بتایا تھا منطق کا موضوع جو ہے وہ معرف اور حجت ہیں بھائی، معرف اور حجت. معرف وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجہول تک پہنچا دیں، اور حجت وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجہول تصدیق تک پہنچا دیں. تو یہ جو معرف اور حجت ہیں یہ منطق کا موضوع ہیں، اور معرف کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ساری تفصیل. اب حجت کے سلسلے میں حجت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قضیوں کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھنا حجت کے اندر شرطیہ متصلہ میں سے صرف لزومیہ معتبر ہے، اتفاقیہ معتبر نہیں. اسی طرح جو منفصلہ ہے اس کے اندر صرف عنادیہ معتبر ہے، اتفاقیہ معتبر نہیں. تو حاصل کلام کیا ہوا کہ حجت میں شرطیہ متصلہ میں سے لزومیہ صرف معتبر ہے، اور منفصلہ میں سے صرف عنادیہ معتبر ہے، باقی اتفاقیہ جو ہیں وہ معتبر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.